उत्पत्ति प्रकरण 91वां सर्ग। भानु को मनु बनाकर ब्रह्मा की सृष्टि का और ऐंदवों की सृष्टि के समान विश्व की मनोमात्र विलासता का निरूपण। भानु ने कहा, हे भगवन, चूंकि भरत का शाप मनोनिग्रह में समर्थ नहीं हुआ, इसलिए मैं यह कहता हूँ, मन अत्यंत कठिन शापों से भी निग्रह के अयोग्य और अभेद्य है। इसलिए ऐंदवों की सृष्टियों का विनाश आप नहीं कर सकते। चूंकि आप महात्मा हैं, इसलिए आपके लिए उनका विनाश करना अयुक्त भी है। हे नाथ, इस संसार में और विविध संसारों में वह कौन सी वस्तु है जो कि महात्मा और सबके स्वामी आपकी दीनता के लिए हो? यानी मेरी सृष्टि वृथा है, ऐसा समझकर आपको दीनता का अवलंबन नहीं करना चाहिए। मन जगतों का करता है, मन पुरुष कहा गया है। जो मन के निश्चय से किया गया है, उसका द्रव्य, औषधि, दंड आदि से विनाश नहीं किया जा सकता। जैसे कि मणि के प्रतिबिंब का विनाश नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये ऐंदव द्विज यहाँ पर दैदीप्यमान अपनी सृष्टि भ्रांतियों के साथ स्थित रहे। आप इस अनंत स्वचित्ताकाश में प्रजा की सृष्टि करके स्थित होइए, क्योंकि चित्ताकाश, चिदाकाश और परमाकाश ये तीनों अनंत है और ये तीनों चिदाकाश से प्रकाशित है। हे जगतपति, आप 1, 2, 3 अथवा बहुत सृष्टियों को कीजिए और इच्छा अनुसार अपनी आत्मा में स्थित होइए। ऐंदवों ने आपका क्या ग्रहण किया है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, तदनंतर ऐंदव जगतों के विषय में भानु के ऐसा कहने पर चिरकाल तक विचार कर मैंने यह कहा, हे भानु, तुमने बहुत युक्ति युक्त कहा है, क्योंकि पूर्वोक्त चार प्रकार का आकाश विस्तृत है, मन भी विस्तृत है और चिदाकाश भी विस्तृत है। इसलिए अपने अभिमत नित्य कर्म रूपी सृष्टि को मैं करता हूँ। हे भास्कर, मैं शीघ्र अनेक प्राणियों के समूहों की रचना करता हूँ, इसलिए हे भगवान, आप ही शीघ्र मेरे पहले मनु होइए। मेरे द्वारा प्रेरित होकर आप अपनी इच्छा अनुसार सृष्टि कीजिए। तदुपरांत हे तपस्वी श्रेष्ठ, महातेजस्वी सूर्य ने मेरे इस वाक्य को स्वीकार कर अपने दो स्वरूप बना डाले। पहले के एक स्वरूप से वह ऐंदव सृष्टि में सूर्यता को प्राप्त हुए। व्योम मार्गगामी होकर उन्होंने उस स्वरूप से दीन परंपरा का निर्माण किया और दूसरे स्वरूप से शीघ्र मेरे लोक का मनुत्व स्वीकार कर मेरी अभिष्ट तत्त सब सृष्टियों की रचना की। हे मुने, यह सब मैंने आपसे महात्मा मन का स्वरूप कहा तथा मन की सर्व कारिता और सामर्थ्य का वर्णन किया। जो जो वस्तु इस चित्त में स्फुरण को प्राप्त होती है, वह सब आविर्भाव को, स्थिरता को और सफलता को प्राप्त होती है। साधारण ब्राह्मण होकर भी मन की भावना के कारण ऐंदव ब्राह्मण ब्रह्मता यानी ब्रह्मा के पद को प्राप्त हुए। यह मन का सामर्थ्य है। जैसे ऐंदव जीव चित भाव से चित्तत्व को प्राप्त कर चित्तत्व से हिरण्य गर्भता को प्राप्त हुए, वैसे ही हम भी चित भाव से चित्तत्व को और चित्तत्व से ब्रह्मता को प्राप्त हो गए। चित्त प्रतिभास स्वरूप है, उसका जो प्रतिभासन है वही देहादि रूप से प्रतीत होता है, इसीलिए देहादि मन ही है। देह प्रतीति चित्त से अन्य नहीं है। चित्त अपने में विविध कल्पनाओं से युक्त है और वह उनकी रचना करता है। यदि कोई कहे कि यदि ऐसा है तो सबका मन एक सी ही कल्पना क्यों नहीं करता, तो यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि काम, कर्म और वासना के अनुसार जिस समय जिसके लिए जैसा संभव होता है, उस समय उसके लिए उतना ही उस प्रकार होता है। जैसे कि मिर्चा कटुता से ही अपने अंदर परिणाम को प्राप्त होता है, निम्ब तिक्त रूप से परिणत होता है और द्राक्ष मधुरता से ही ये सब अपने अपने संस्कार से व्यवस्थित है, वैसे ही मन भी तत्त समय में तत्त वस्तु की अपने में ही रचना करता है। इसीलिए चित्त के समान प्रतीत आतिवाहिक सूक्ष्म देह को ही स्थूलता की भ्रांति से युक्त होने पर लोग तत्त देह के नाम से कहते हैं। सूक्ष्म वासना वाला यह चित्त जीव कहलाता है और स्थूलता भ्रम से युक्त यह चित्त देह कहलाता है। इस भेद के क्रम से जिसमें तीनों देह का यानी कारण सूक्ष्म तथा स्थूल देहों का चमत्कार विनष्ट हो गया उस जीव को आप परब्रह्म ही समझिए। हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार तंतुओं से पट की तरह किसी की भी देह चित्त से पृथक नहीं है, न मैं हूं न अन्य है, यह सब विचित्र चित्त ही स्थित है। हैंदवों की संवित के समान असत ही चित्त सत्ता को प्राप्त हो गया है। जैसे हैंदवों का मन ब्रह्मा है, वैसे ही यह मैं भी मन की कल्पना से ब्रह्मा होकर स्थित हूँ। उनके द्वारा की गई संकल्पात्मक सृष्टि भी मैं ही हूँ। कोई चित्त का विलास रूप यह मैं ब्रह्मा रूप से स्थित हूँ। परमात्मा ही संपूर्ण प्रपंचों से शून्य चिदाकाश से मानव पृथक होकर देहादि रूप से प्रतीत होता है, ऐसा जानो। परमार्थ रूपिणी शुद्ध चिति ही इस प्रकार भावना करने से जीव तदनंतर मन होकर व्यर्थ इस प्रकार देहता का अनुभव करती है। चिद वपु चेतन परमात्मा ही ऐंदवों के संसार की नाई सर्वात्म रूप से प्रतीत होता है। जैसे अपने अज्ञान से उत्पन्न हुआ स्वप्न दीर्घकालिक होकर जागृत स्वरूप प्रतीत होता है, वैसे ही चैतन्य स्वरूप परमात्मा सर्वात्म रूप से प्रतीत होता है। चूंकि सूक्ष्मतम वासनामय शब्द तन्मात्राओं के अध्यास से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यह ऐंदवों के चित्ताकाश के समान ही उत्पन्न हुआ है। यह दो चंद्रमाओं के भ्रम की तुल्य असत ही है। जो अहम रूप उदासीन स्वभाव अनुभूत होता है वह सत नहीं है, क्योंकि सर्वत्र चित्त के कार्यों में उसका दर्शन नहीं होता, और वह असत भी नहीं है क्योंकि असत की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए वह सत्ता असत्ता रूप है, यानी सत रूप होने से वह सत ही है, असत स्वरूप होने से वह असत ही है। कहीं पर उसकी प्रतीति होती है, अतएव वह सत सा प्रतीत होता है, कहीं पर उसकी उपलब्धि नहीं होती, अतः असत स्वरूप है। यो विरुद्ध स्वभाव वाला प्रतीत होता है, इसीलिए वह मायक ही है, यह अर्थ है। संकल्प रूपी विपुलाकार मन को जड़ और अजड़ स्वरूप जानिए। ब्रह्म रूप होने के कारण वह अजड़ है और दृश्य रूप होने से जड़ है। मन दृश्य के अनुभव काल में दृश्य की तरह स्थित रहता है। सत्यात्मा के सद्भाव में ब्रह्म के अनुभव से अतिरिक्त उसका विलास नहीं रहता, अतः ब्रह्म ही है। जैसे सुवर्ण में कटकत्व हाथ के अलंकरण रूप कार्य की दृष्टि से सुवर्ण से पृथक होता हुआ भी सुवर्ण दृष्टि से सुवर्ण ही रहता है, वैसे ही मन भी ब्रह्म रूप से स्थित रहता है। ब्रह्म सर्वमय है, इस प्रकार सभी जड़ और सभी चिन्मय ही है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ यानी चीटी पर्यंत संपूर्ण जगत जड़ा जड़ धर्म शून्य है। युक्ति रूप दृष्टि से देखने पर एक में उक्त उभय विधता असंभव है, ऐसा बोध होता है सही, पर परमार्थ दृष्टि से तो वह धर्म शून्य है। अर्थात परम तत्व में जड़त्व और चेतनत्व रूप किसी भी धर्म की स्थिति सिद्ध नहीं हो सकती। वृक्ष आदि पदार्थ चिन्मय नहीं है, अतः उनकी उपलब्धि का संभव नहीं है, क्योंकि सदृश वस्तुओं की सदृश संबंध से वृत्ति द्वारक ऐक्य संबंध से उपलब्ध होना प्रसिद्ध है। केवल जड़ैक्य रूपवाद में तो प्रमेय चैतन्य ही नहीं है, फिर उसके उपलम्भ यानी प्रत्यक्ष ज्ञान का संभव कैसे। प्रमेय का उपलम्भ में अंतर्भाव होने पर उपलम्भ के विषय पदार्थ की चित स्वभावता ही अवशिष्ट रहती है, इसीलिए इस सब को अजड़ ही यानी चेतन ही समझो, क्योंकि पूर्वोक्त दो चैतन्यों का वृत्ति द्वारक ऐक्य लक्षण संबंध से ही उपलब्ध होता है। ऐसी अवस्था में उपलम्भ न होने पर तथा उपलम्भ होने पर जड़ चेतन भेद दुर्घट है। जैसे महामेरु में पत्ते लता आदि नहीं रहते, वैसे ही अनिर्देश्य पद में जड़त्व चेतनत्व आदि शब्दार्थ नहीं है। चित की जो चेत्याकार कल्पना है वही मनस्त्व कहा गया है। उसमें जो चिद भाग है वह अजड़ है और चित्यांश में जाड्य है। इसमें चिद भाग ज्ञानांश है और चित्य भाग जड़ दिखाई देता है। इस प्रकार जगत भ्रांति को देखता हुआ जीव चंचलता को प्राप्त होता है, यानी इसमें चैतन्य रूप आत्मांश की विस्मृति होने से जड़ स्वरूप जीव जगत का भ्रम उत्पन्न हुआ है। चित्त में स्थित चित्त स्वभाव ही चित्त, चित्त और जगत इस भेद से दो प्रकार का किया गया है। इसलिए एकमात्र चित बुद्धि से ज्ञात यह संपूर्ण जगत चित ही है और द्वैत बुद्धि से ज्ञात भी यह जगत चित ही है। निर्विभाग भी चेतन अन्य रूप दृश्य रूप से स्वगत भेद तुल्य अपने शरीर को देखकर भ्रम से आर्त होकर भटकता है। वास्तव में यहाँ न भ्रांति है न भ्रांति युक्त पुरुष है, यह निश्चय है, किंतु परिपूर्ण सागर के तुल्य स्थित हुई चीति ही जगत भ्रांति आदि रूप से जानती है, यानी अनुभव करती है। इस चीति का सर्वरूप यानी जगत रूप जाड्य भी चीति ही है, क्योंकि उस जाड्य में तुमको चित्त का अनुभव होता है। यदि उसे अचित एक स्वभाव ही माना जाए तो उसका स्फुरण नहीं होगा और स्फुरण न होने से जाड्य की भी सिद्धि नहीं होगी। जैसे जड़ में अवबोध है वैसे ही चेतन में जड़ भाग भी है। ज्ञान का अंश चित भाव है और जड़ता का उदय अहंता है, पर तत्व में अहंता आदि तनिक भी नहीं है, क्योंकि वह चिदेक रस है। जैसे जल में लहर आदि पृथक नहीं है वैसे ही वह केवल संविदेक रस है। आविर्भाव को प्राप्त हुआ जो चैत्य है उसे अहंता से दिखाई देने वाला जानो। वह मृग तृष्णिका के जल के अनुरूप है, वस्तुतः वह है ही नहीं। संपूर्ण द्वैत का बाध होने पर भी विनष्ट न होने वाले आत्म तत्व को अहंता का अनाश्रय जानिए और उस निरामय ज्ञान रूप चित स्वभाव को ही लोग वासना से घनीभूत अहंतादि रूप से जानते हैं। जैसे कि शीतलता को ही घनी भाव होने पर हिम रूप में देखते हैं, स्वप्न में अपने मरण के तुल्य चेतन ही जाड्य को प्राप्त करता है। सबके आत्मस्वरूप होने के कारण संपूर्ण शक्तियों का आविष्कार करता हुआ चेतन ज्ञान की दृढ़ता के बिना समता को प्राप्त नहीं होता। पदार्थ आदि रूप से सर्वरूप मन ही वृद्धि को प्राप्त होता है। नाना प्रकार का चित रूपी यह आतिवाहिक देह आकाश के समान निर्मलाकृति है। स्थूल देह आदि रूप तीन देहों की प्रतिभा रूपता का त्याग कर रहे अधिकारी चित्त को ही प्रतिभासात्मक चित्त का स्वयं विचार करना चाहिए। चित्त रूपी तांबे का शोधन करने पर जब वह परमार्थ रूप सुवर्णता को प्राप्त होता है तब निरतिशय आनंद की उपलब्धि होती है। यदि कोई कहे तब देह आदि का भी शोधन करना चाहिए, उससे भी पुरुषार्थ क्यों प्राप्त नहीं होता, इस पर कहते हैं देह रूप पत्थर के टुकड़ों का शोधन करने से क्या लाभ है, अर्थात देह आदि का शोधन वृथा है। जो वस्तु वर्तमान रहती है उसका शोधन होता है, उसका शोधन फलवान है। आकाश में कल्पित वृक्षों का शोधे जाते किसने देखा। यदि देहादि अविद्या सत्य हो तो उसका शोधन हो सकता है। अतएव आत्मा आदि शब्द देह में प्रयुक्त किए गए भी श्रुति में देहवाची नहीं देखे गए, क्योंकि श्रुति असत्य अर्थ का प्रतिपादन नहीं करती है। जो असत्य का आग्रह करने वाले देह में दृढ़ आत्मबुद्धि करने वाले चार्वाक आदि पामर है वे आत्मादि देहवाची ही हैं, ऐसा कहते हैं। जो उनकी प्रामाणिक वस्तु का तनिक भी उपदेश करते हैं वे पुरुष पशु है। यह मन जैसी भावना करता है तुरंत वैसा ही हो जाता है। यहाँ पर ऐंदव अहल्या और कृत्रिम इंद्र आदि के निश्चय दृष्टांत है। प्रतिभास स्वरूप चित्त जब जब जिस रूप से स्फुरित होता है तब तब उस प्रकार के देह के रूप से उदित होता है। यह देह नहीं है, अहम रूप से प्रसिद्ध अहंकार भी नहीं है। इसीलिए तुम एक रस स्वस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर इच्छा शून्य होकर स्थित होवो। जैसे बालक किसी युक्ति से यक्ष रहित देह में प्राप्त होकर भी यक्ष उसकी भीषणता आदि कल्पना से भय को प्राप्त होता है, वैसा ही यह मनुष्य आदि का शरीर है। यह प्रत्यक्ष देह भोग्य प्रपंच है, यो अपनी कल्पना से यह आत्मा ही देह होता है और यही संपूर्ण भोग्य होता है। उन भावों को प्राप्त होने से देह आदि के नाश के पश्चात नाश को प्राप्त होता है। 91वां सर्ग समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण 92वां सर्ग। पुनः शंका कर मन की अमोघ शक्ति की दृढ़ रूप से स्थापना का तथा पुरुष प्रयत्न की दृढ़ता होने पर यथेष्ट कार्याचरण में सामर्थ्य का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल दीपक, भगवान ब्रह्मा जी ने मुझसे यह सब कहा। मैंने उनके पूर्व कथित वाक्य में अनुपपत्ति दर्शाकर फिर उनसे पूछा, भगवान, आपने ही शाप मंत्र आदि की शक्तियां अमोघ है ऐसा कहा है, फिर आपने ही उन्हें मोघ यानी व्यर्थ कैसे कर डाला? देखा गया है कि शाप द्वारा और मंत्र की शक्ति द्वारा प्राणियों के मन बुद्धि इंद्रिया आदि सभी मूढ़ हो जाते हैं। देखिए ना, शाप से अजगर बने हुए राजा नहुष की स्ववंशज भीम को डसने में प्रवृत्त हुई थी, वैसे ही शाप से राक्षस बने हुए अति धार्मिक राजा सौदास की बुद्धि के व्यामोह से ब्राह्मण वध आदि पाप में प्रवृत्ति हुई थी। शाप से गंधर्व राज की धृतराष्ट्र जन्म में चक्षुरिंद्रिय का विनाश हुआ था। ऐसा एक आद जगह ही नहीं, अनेक जगह देखा गया है। जैसे ये वायु और स्पंदन अभिन्न है, तेल और तिल अभिन्न है, और जैसे अग्नि और उष्णता अभिन्न है, वैसे ही मन और देह भी अभिन्न ही है, क्योंकि मन ही तो देह है। तात्पर्य यह है कि मन पर ही यदि वरदान या शाप का आक्रमण नहीं होता है तो उससे अभिन्न देह में भी उसका आक्रमण नहीं होना चाहिए। यदि कहिए यह देह कोई पदार्थ ही नहीं है, केवल मन से ही स्वप्न मृग तृष्णा और दूसरे चंद्र के तुल्य उसका मिथ्या ज्ञान होता है, दोनों में से एक का नाश होने पर दोनों का ही नाश अवश्य होना चाहिए। जैसे मन का विनाश होने पर देह का नाश देखा जाता है, वैसे ही देह का नाश होने पर मन का विनाश भी हो सकता है। इस प्रकार देह की मन की अपेक्षा न्यून सत्ता सिद्ध नहीं होती, बल्कि नेत्र आदि से अदृश्य होने पर प्रत्यक्ष का विषय होने से स्वप्न आदि के समान मन की ही देह की अपेक्षा न्यून सत्ता सिद्ध होती है। यो रज्जु का विनाश होने पर सर्प की अवस्थिति की भांति देह का विनाश होने से मन की अवस्थिति का संभव नहीं है, यह भाव है। हे प्रभो, मन शाप आदि दोषों से कैसे आक्रांत नहीं होता अथवा कैसे आक्रांत होता है? हे परमेश्वर, यह आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो शुभ कर्मानुसारी शुद्ध पौरुष से मनुष्य को प्राप्त न हो सके। इस जगत में ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सदा समस्त जातियां और सब प्राणी दो शरीर वाले हैं। उनमें एक तो मनोमय शरीर है जो शीघ्र कार्य करने वाला और सदा चंचल है, दूसरा मांसमय शरीर है जो अकिंचितकर है। उक्त दो शरीरों में मांसमय शरीर सभी लोगों को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात है, उस पर शाप तथा अभिचार आदि कृत्या शस्त्र अस्त्र विष आदि का आक्रमण होता है। यह मांसमय शरीर मुख प्राय असमर्थ दीनहीन क्षण में नष्ट होने वाला पद्म पत्र में स्थित जल के समान चंचल तथा दैव यानी प्राक्तन कर्म आदि के कारण स्थित है। यहाँ पर प्राणियों का मन नामक दूसरा जो यह शरीर है वह तीनों लोकों में प्राणियों का स्वाधीन होता हुआ भी स्वाधीन नहीं है। यदि वह अपने पौरुष का आश्रय लेकर और कभी नष्ट न होने वाले अपने धैर्य का अवलंबन लेकर खड़ा होता है तो संपूर्ण दुख आदि उस पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। दुख आदि के हेतुओं से वह अदूषित रहता है। प्राणियों का मनोमय शरीर जैसे जैसे प्रयत्न करता है वैसे वैसे वह स्वनिश्चय के फल का भाजन होता है। मांसमय देह का कोई भी पौरुष क्रम सफल नहीं होता, मनोमय देह की संपूर्ण चेष्टाएं सफल होती है। चित्त सदा पवित्र विचार का स्मरण करता है, इसलिए जैसे पत्थर में बाण निष्फल होते हैं वैसे ही उसमें शाप आदि निष्फल है। शरीर जल में, अग्नि में, चाहे कीचड़ में गिर पड़े किंतु मन जिसका ध्यान करता है तुरंत उसी को प्राप्त होता है। संपूर्ण देह आदि भावों का विनाश होने पर भी प्रयत्न समृद्ध होकर बिना किसी प्रकार की विघ्न बाधा के फल देता है। वह जो देता है वह मन ही मन का फल देता है, क्योंकि पौरुष भी तो मन से अभिन्न है। पौरुष बल से अपने अंदर चित्त को प्रियामय बनाकर कृत्रिम इंद्र को उस भीषण दुख पीड़ा का तनिक भी अनुभव नहीं हुआ। शूल के अग्रभाग में स्थित मांडव्य ऋषि ने अपने पुरुष प्रयत्न से मन को राग रहित और दुख शून्य बनाकर संपूर्ण क्लेशों पर विजय पाई, यानी क्लेशों को क्लेश रूप से नहीं जाना। ऋषि मांडव्य की कथा महाभारत आदि में प्रसिद्ध है। अंध कुएं में गिरे हुए दीर्घ तपा नाम के ऋषि को मानसिक यज्ञों से स्वर्ग प्राप्त हुआ। ऋषि दीर्घ तपा भी यज्ञ करने की इच्छा से यज्ञ की सामग्री का संग्रह करने के लिए आश्रम से निकले, अकस्मात किसी अंधे कुएं में गिर पड़े। वहां यज्ञ काल के अतिक्रमण का प्रसंग होने पर मन से ही उन्होंने यज्ञ किया। उससे इंद्र प्रसन्न हुआ, उन्हें कुएं से निकालकर अपने लोक को ले गए। यह कथा महाभारत में प्रसिद्ध है। मनुष्य होते हुए भी इंदु के पुत्रों ने पुरुषोद्योग से यानी पौरुष से ध्यान द्वारा ब्रह्मता का यानी ब्रह्मा का पद प्राप्त की। उनकी ब्रह्मता का मैं भी खंडन नहीं कर सकता। और भी जो सावधान धीर देवता महर्षि है वे चित्त से अपनी उपासना का तनिक भी त्याग नहीं करते हैं। जैसे कमलों की चोट पत्थर को नहीं तोड़ सकती वैसे ही मानसिक व्यथाएं शाप और पाप दृष्टि वाले राक्षस पिशाच आदि अपने ध्येय पदार्थ में एकाग्र चित्त का तिरस्कार नहीं कर सकते। जो कोई शाप काम क्रोध आदि मानसिक व्यथा रूपी बाणों से खंडित हुए उनका मन उपासना में अदृढ़ पौरुष वाला और ज्ञान में भी असमर्थ था, ऐसा मेरा तर्क है। इस संसार में सावधान मन वाला कोई भी पुरुष स्वप्न में अथवा जागृत में कभी भी दोषों से जरा भी जड़ीभूत नहीं हुआ। इसीलिए पुरुष इस संसार में पुरुष प्रयत्न के साथ मन से ही मन को अपने से ही अपने को पवित्र मार्ग में लगाए। हे मुनि जी, जो वस्तु मन को प्रतिभासित होती है वही अत्यंत यथार्थ सी ही होती है। एक क्षण में ही मन वेताल की नाई स्थूल हो जाता है। जैसे कुलाल की यानी कुम्हार की घट निर्माण क्रिया के अनंतर घड़ा अपनी मृतपिंड दशा का त्याग कर देता है वैसे ही पुरुष उत्तर पदार्थ की वासना के अनंतर ही पूर्व की स्थिति का त्याग कर देता है। भाव यह है कि आगे की दृढ़ वासना से पिछली वासना का विनाश हो जाता है। हे मुनि जी, जैसे चंचल जल क्षण भर में ऊंची तरंग के रूप में प्राप्त होता है वैसे ही स्पंद मात्र मन एक क्षण में ही भावित पदार्थता को प्राप्त होता है। विरोधी का विनाश करने तक ही अपने कार्य में विलंब होता है, उसके बाद तो कोई विघ्न न रहने से एक क्षण में उपासना जनित वासना के विषयभूत पदार्थता को प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाश नहीं होता। जिस पुरुष के नेत्र में विकार है, यानी जिसने अपनी अंगुली से दृष्टि बंद की है, यानी आंख को दबाई है, उसे जैसे दो चंद्र देखने का अनुभव होता है, वैसे ही मन केवल अनुसंधान से सूर्य के बिंब में भी रात्रि को देखता है। यह मन भावना से जिसे देखता है, झटपट फल रूप में परिणत हुए उसी का हर्ष और विषाद से उपभोग करता है, इसीलिए जो करता है वही भोगता है। अनुसंधान यानी भोक्ता के अदृष्ट से उद्बोधित संस्कार का अनुसारी मन चंद्रमा में भी सैकड़ों अग्नि ज्वालाओं को देखकर दाह को प्राप्त होता है और जलकर दुखी होता है। यह बात विरही पुरुषों में प्रसिद्ध है, यह अर्थ है। भोक्ता के अदृष्ट से उद्बोधित संस्कार का अनुसारी चित्त क्षार मिट्टी में रसायन को देखकर और उनका पान कर परम तृप्ति को प्राप्त होता है, मारे हर्ष के प्रसन्न होता है और नाचता है। ऊंट बकरी आदि आंख निम्ब आदि के पत्ते भी बड़े चाव से खाते देखे जाते हैं। अनुसंधान का अनुसरण करने वाला मन आकाश में भी महावन को देखकर उसको काटता है और काटकर फिर उसमें वृक्ष लगाता है। हे वत्स वशिष्ठ, इस प्रकार मन जिस इंद्रजाल की रचना करता है उसी को शीघ्र देखता है। यह जगत न सत है और न असत है, ऐसा जानकर विविध भेदों से युक्त परिच्छिन्न दृष्टि का तुम परित्याग करो। 92वां सर्ग समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण 93वां सर्ग। ब्रह्म से मन की उत्पत्ति, उससे तेजस ब्रह्मा की उत्पत्ति, उससे मोहवश अहंकार की उत्पत्ति तथा उससे विश्व की उत्पत्ति का वर्णन। वत्स श्री राम जी, ब्रह्मा ने कहा, वत्स श्री राम जी, भगवान ब्रह्मा जी ने यह सब मुझसे पहले कहा था। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, वत्स श्री राम जी, भगवान ब्रह्मा जी ने यह सब मुझसे पहले कहा था, वही आज मैंने आपसे कह दिया है। अब व्याकृत नाम रूप वाले उस ब्रह्म से चारों ओर से अति सूक्ष्म होने के कारण नाम संबंध के अयोग्य निर्विकल्प ज्ञान से प्रकाशित संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न होता है। वह समय पाकर संकल्प विकल्प रूप मनन की सामर्थ्य की उत्पत्ति से स्वयं घनता को प्राप्त होकर मन बन जाता है। उक्त मन तन्मात्र रूप सूक्ष्म भूतों की कल्पना पूर्वक स्वप्न शरीर के समान वासनामय पुरुष का आकार धारण करता है। उस वासनामय पुरुष आकार रूपी उपाधि से उपहित आत्मा तेज प्रधान लिंग शरीर समष्टि रूप उपाधि वाला होने से तेजस हो जाता है। उसी ने अपना ब्रह्मा यह नाम किया। मन रूप तत्व के आकार वाले ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा संकल्पमय होने के कारण जिस वस्तु का संकल्प करते हैं उसी को देखते हैं। तदनंतर उन्होंने इस अविद्या की कल्पना की, वह अनात्मा में आत्माभिमान रूप है। इस रीति से उस ब्रह्मा ने पर्वत तृण समुद्र रूप इस जगत की क्रम से कल्पना की। यद्यपि इस क्रम से चिदेक रस ब्रह्म तत्व से यह सृष्टि आई है, तथापि तार्किक लोगों को अन्य से यानी जड़ प्रधान परमाणु आदि से यह प्राप्त हुई है ऐसी प्रतीति होती है। इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी, जैसे समुद्र में तरंगों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही तीनों लोकों के मध्यवर्ती संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति उक्त ब्रह्म से हुई है। जगत की उत्पत्ति का प्रकार इस तरह दर्शाया गया है। चूंकि जगत ब्रह्म का विवर्त ही है, अतएव परमार्थता उत्पन्न न हुए जगत में जो ब्रह्म का चित्त रूपी चैतन्य है वह अहंकार समष्टि रूप उपाधि में ब्रह्म प्रविष्ट सा है, ऐसी कल्पना कर ब्रह्मता को यानी परमेष्टिता को प्राप्त होता है। जो अन्य चिदाभास है वे सब सर्वशक्तिमान ब्रह्म से अभिन्न ही है। जब यह जगत विस्तार को प्राप्त होता है तब वे ही पितामह रूप यानी ब्रह्मा रूप मन से सर्वप्रथम उल्लास को प्राप्त होते हैं। वे ही सब पृथक पृथक चिदाभाव उपाधि की असंख्य और संसरणशील जीव कहे जाते हैं। वे चिदाकाश से ही उत्पन्न होकर मायाकाश में तन्मात्रोपाधियों के यानी भूत मात्रोपाधियों के साथ मिलकर आकाश में स्थित आवह उद्वह आदि भेदों से भिन्न वायुओं के 49 स्तरों के मध्यवर्ती 14 लोगों में जिस प्रकार की भूत जाति में रहने से जिस प्रकार की वासना और कर्म से अभिनिविष्ट होते हैं, उसी भूत जाति के प्राण शक्ति द्वारा स्थावर या जंगम शरीर में प्रविष्ट होकर रजवीर्य रूप बीजता को प्राप्त होते हैं। तदुपरांत योनि से जगत में उत्पन्न होते हैं। तदनंतर काकतालीय न्याय के संबंध से उत्पन्न वासना प्रवाह के अनुसार अपने कर्म फल के भागी होते हैं। तदनंतर शुभ और अशुभ वासनाओं से युक्त पुण्य पाप कर्म रूपी रस्सियों से जिनका लिंग शरीर बंधा है ऐसे वे जीव घूमते हुए उत्तम लोकों में जाते हैं अथवा नरकों में गिरते हैं। ये सब प्राणियों की जातियां इच्छा रूप ही हैं। श्रुति भी यही कहती है काममय ऐवायम पुरुषः, यह पुरुष काममय ही है। यह इसका अर्थ कोई जीव जिनको हजारों वर्षों के बाद तत्वज्ञान होने वाला है कर्म रूपी बवंडर से भ्रांत होकर पर्वतों के मध्य में वन के पत्तों की नाई संसार में पड़ते हैं और इधर उधर लुढ़कते हैं, तदनंतर मुक्त हो जाते हैं। भाव यह है कि जब तक मोक्ष न हो तब तक इच्छा के अनुसार जन्म परंपरा होती रहती है। कोई जीव जो कि चित सत्ता के अज्ञान से मोहित रहते हैं अतएव असंख्य जन्म वाले हैं, चिरकाल से जन्म लेकर इस संसार में सैकड़ों कल्पों तक उत्पन्न होते हैं। कोई जीव जिनके कुछ अमनोहर जन्मांतर बीत चुके हैं और जो इस समय शुभ कार्यों में तत्पर होकर इस जगत में विहार कर रहे हैं वे थोड़े ही जन्मों में मुक्त हो जाएंगे। जैसे वायु से उड़ाए गए समुद्र के बिंदु समुद्र में प्रवेश करते हैं वैसे ही जिन्होंने तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया है ऐसे कोई जीव परम पद को पहले ही प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार परम पद रूप ब्रह्म से संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति यहाँ हुई है। यह उत्पत्ति आविर्भाव यानी प्रकट होना और तिरोभाव से यानी छिपने से क्षणभंगुर है। विविध जन्मों से शोभायमान है। वासना रूपी विषय की विषमता से हुई व्याकुलता रूपी ज्वर को धारण करती है। अनेक दुखों से पूर्ण अनर्थकारी कार्यों का सत्कार करने वाली है। अनेक दिशाओं अनेक देशों अनेक कालों में विविध पर्वतों की गुफाओं में कर्म फल का भोग कराती है। रची गई उत्तम विचित्रताओं से उसने चारों ओर भ्रमों का निर्माण कर रखा है। परमार्थ रूप से वह असत्य है। श्री रामचंद्र जी इस संसार रूपी जंगल की जीर्ण शीर्ण लता का विक्षुब्ध मन ही शरीर है। यदि यह तत्वज्ञान रूपी कुल्लाड़ी से काट दी जाए तो जैसे कटी हुई लता फिर नहीं पनपती वैसे ही फिर नहीं पनपती है। 93वां सर्ग समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण 94वां सर्ग। उपाधि तथा गुणों की विचित्रता से शीघ्र और विलंब से मुक्त होने वाली 12 प्रकार से भिन्न जीव जातियों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं वत्स श्री रामचंद्र जी, सात्विक तामस और राजस भेद से उत्तम अधम और मध्यम जीवोपाधि रूप पदार्थों की विविध भुवनों में जो उत्पत्तियां पहले कही है उनका यह विभाग है, उसे मैं कहूंगा। आप सुनिए। इदं प्रथमता गुणपिवरी ससत्वा अधमसत्वा अत्यंततामसी राजसी राजससात्विकी राजसराजसी राजसतामसी राजसात्यंततामसी तामसी तामससत्वा तमोराजसी और अत्यंततामसी। आगे कहे जाने वाले इन 14 भेदों में अंतिम दो भेदों का 5वें और 9वें भेद में अंतर्भाव होने के कारण 12 भेद बचते हैं। उनमें से पहली इदम प्रथमता नामक उत्पत्ति को दर्शाते हैं। जिस जीव को पहले कल्प के अपने अंतिम जीव जन्म में शम दम आदि सर्वसाधन गुण संपत्ति प्राप्त होने पर भी श्रवण मनन आदि का लाभ न होने या बलवान विघ्न रहने से ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, वह जीव इस कल्प में प्रथम जन्म में ही ज्ञान लाभ के योग्य बनकर उत्पन्न होता है। उस श्रेणी के जीव का वह जन्म इदम प्रथम नाम से विख्यात होता है। यह इदम प्रथमता पूर्व कल्प के शुभाभ्यास का फल है। अब दूसरी जीव जाति को दर्शाते हैं। वही यदि पूर्व जन्म में वैराग्य कम होने के कारण उत्तम उत्तम लोगों की प्राप्ति के लिए किए गए उपासना रूप शुभ कर्मों से युक्त हो, अतएव विचित्र संसार की वासना से भोग व्यवहार वाली हो, तो भोगों से वासना का क्षय होने पर कतिपय यानी 10 या 15 ही जन्मों में मोक्ष को प्राप्त करा देती है। इस कारण वह गुणपीवरी कही गई है, क्योंकि वह शांति राग आदि गुणों से युक्त है। तीसरी जीव जाति को कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, विविध प्रकार के सुख दुख रूपी फलों के प्रदान रूपी मुख्य हेतुओं से पूर्व कल्प के पुण्य और पाप का अनुमान कराने वाली जो जीव जाति है उसको बुद्धिमान पुरुष ससत्वा कहते हैं। वह भी क्रम से सत्व गुण की वृद्धि होने पर लगभग 100 जन्मों में मोक्ष भागिनी होती है, यह अर्थात प्रतीत होता है। चौथी जीव जाति को कहते हैं, जो जीव जाति विचित्र संसार की वासनाओं से युक्त हो, अत्यंत कलुषित यानी पूर्व कल्प में संचित अत्यधिक दुष्कर्म और दुर्वासनाओं से मलिन हो, और भांति भांति के भले और बुरे फलों के प्रदान रूप हेतुओं से पूर्व कल्प के धर्म और अधर्म का अनुमान कराती है, इस कारण उसे सज्जन पुरुष अधम सत्वा कहते हैं। पांचवी जीव जाति को कहते हैं, पूर्वोक्त लक्षण वाली उत्पत्ति ही यदि अध्यात्म शास्त्र से विमुख होने के कारण असंख्य अनंत जन्मों के बाद इस कल्प में जिसमें मोक्ष प्राप्ति संदिग्ध हो यानी किसी प्रकार मोक्ष की संभावना हो ऐसी हो तो उसे अत्यंत तामसी कहते हैं। छठी जीव जाति को कहते हैं, हे नृप से श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, पुरुष की जो उत्पत्ति पूर्व कल्प की वासनाओं के अनुरूप हो अतएव वैसे ही कार्य करने वाली हो, इस कल्प के 2-3 जन्मों के मध्य में मनुष्य आदि रूप हुई हो, तदनुसार स्वर्ग नरक आदि में पहुंचाने वाली और संदिग्ध मोक्षा हो, वह लोक में राजसी कहलाती है। सातवीं जीव जाति को दर्शाते हैं, वह उत्पत्ति जब राजस दुखों के अनुभव से उत्पन्न वैराग्य की समृद्धि से जिसका ज्ञान प्राप्ति योग्य जन्म सन्निकट है ऐसी होती है, महामति मुमुक्षुओं द्वारा उसी जन्म में मरणे मात्र से वह मोक्ष योग्य कही जाती है। उसको मैंने उक्त कार्य हेतुक अनुमान से राजस सात्विकी कहा है। आठवीं जीव जाति को दर्शाते हैं, वही यदि उक्त मनुष्य जन्मों से भिन्न यक्ष गंधर्व आदि के जन्मों से क्रमशः ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष भागिनी हो तो उस प्रकार की उत्पत्ति को उसके ज्ञाता विद्वान राजसी कहते हैं, नवी जीव जाति को दर्शाते हैं। वही यदि चिरकाल की अभिलाषावादी होने से सैकड़ों जन्मों से मोक्ष भागिनी हो और वैसे ही यानी राजस तामस फल को देने वाले उपासना आदि कर्म का आरंभ करने वाली हो तो उस जीव जाति को सज्जनों में राजस तामसी कहा है, दसवीं जीव जाति को दर्शाते हैं। यदि वही उत्पत्ति जिसमें हजारों जन्मों से भी मोक्ष पाने में संदेह हो और राजस अत्यंत तामस आदि फल को देने वाले उपासना आदि कर्मों के आरंभ वाली हो तो उसको राजसात्यंत तामसी कहते हैं, ग्यारहवीं जीव जाति को कहते हैं। कल्प के आदि में हिरण्यगर्भ में मनुष्यों की जो उत्पत्ति है उसमें जिसमें अनेकों जन्म भोगे गए हो और मोक्ष दूसरे कल्प में होने वाला हो उसे महर्षियों ने तामसी उत्पत्ति कहा है, बारहवीं को कहते हैं। वह तामस उत्पत्ति यदि तामस जन्म से ही मोक्ष की भागिनी हो और तामस फल प्राप्त कराने वाले उपासना आदि कर्मों से शोभित होने वाली हो तो उसे जानकर विद्वान लोग तामस ससत्वा कहते हैं। अब तेरहवीं जीव जाति को कहते हैं। यदि रजोगुण तमोगुण प्रचुर फलों से युक्त कुछ जन्मों के बाद ही मोक्ष भागिनी उत्पत्ति हो तो ऐसा होने पर वह रजस तमोगुण बहुला उत्पत्ति तमोराजस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करती है। जो उत्पत्ति पहले के हजारों जन्मों से युक्त और आगे आने वाले सैकड़ों जन्मों से भी मोक्ष के अयोग्य है उसको इसीलिए उत्पत्ति विभाग जानने वाले विद्वान तामसी कहते हैं। जो उत्पत्ति पहले लाखों जन्मों से युक्त है और आगे भी लाखों जन्म से जिसके मोक्ष प्राप्ति में संदेह है ऐसी उत्पत्ति अत्यंत तामसी कहलाती है। जिसकी परिपूर्णता कुछ प्रचलित हुई है ऐसे समुद्र से जैसे लहरें उठती है वैसे ही ये संपूर्ण भूत जातियां ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। अपने तेज से जिसका कलेवर चंचल हुआ है तेज स्वरूप दीपक से जैसे किरणें निकलती है वैसे ही ये सभी जीव राशियां ब्रह्म से ही निकली है। जैसे प्रज्वलित अग्नि से उसकी ज्वालाओं के बल से उत्पन्न हुई चिंगारियां उत्पन्न होती है वैसे ही ब्रह्म से ये सब प्राणी वर्ग उत्पन्न हुए हैं। जैसे चंद्रमा के बिंब से किरणें निकलती है वैसे ही मंदार की मंजरी के सदृश ये संपूर्ण जीवराशियां उस ब्रह्म से ही उदित हुई है। जैसे वृक्ष से वृक्ष रूप विविध शाखाएं उत्पन्न होती है वैसे ही ये संपूर्ण दृश्य राशियां ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे सुवर्ण से कड़ा बाजूबंद आदि आभूषण उत्पन्न होते हैं वैसे ही सभी जीव श्रेणियां ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। जैसे निर्मल कांति वाले झरने से जलबिंदु निकलते हैं वैसे ही सभी जीवराशियां ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। हे श्री राम जी, जैसे घटाकाश बटलोई का यानी पतीली का आकाश छिद्राकाश आदि आकाश की ही रचनाएं हैं वैसे ही अजन्मा पर ब्रह्म की ही संपूर्ण प्राणी वर्ग रूप में कल्पना हुई है। जैसे जल के सीकर यानी छोटे छोटे जलबिंदु जल भौरियां लहरें और बड़े जलबिंदु जल से ही उत्पन्न होते हैं वैसे ही ये संपूर्ण लोक रचनाएं परम पद ब्रह्म से ही उदित हुई है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे सूर्य के तेज से मृग तृष्णा की नदियां उत्पन्न होती है वैसे ही संपूर्ण दृश्य सृष्टिया ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। जैसे चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा से पृथक नहीं है और जैसे तेज की प्रभा तेज से भिन्न नहीं है वैसे ही ये सब दृश्य पदार्थ दृष्टा ब्रह्म के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है। इस प्रकार ये विविध प्राणियों के वर्ग जिससे उत्पन्न होते हैं उसी में उपाधि के लय से अभेद को प्राप्त हो जाते हैं। इनमें कोई प्राणी वर्ग चिरकाल से जन्म मरण आदि भोग रहे है और हजारों जन्मों के बाद वे लीन होंगे और किन्हीं के अभी कुछ ही जन्म व्यतीत हुए हैं, यो उनकी व्यवस्थिति है। वत्स श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार भगवान पर ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से व्यवहार करने वाले उपाधि रूप शोभा वाले विलक्षण विलक्षण रूपों से युक्त पूर्वोक्त प्राणी वर्ग अग्नि से निकली हुई चिंगारियों के समान विविध जगतों में आते हैं, जाते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में भ्रमण करते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। 94वां सर्ग समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण 95वां सर्ग। अज्ञानी जनों के बोध के लिए न कि वस्तुतः कर्म और कर्ता की सहोत्पत्ति का आशंका पूर्वक समर्थन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे वृक्ष से फूल और उसकी सुगंधि साथ ही साथ प्रकट होते हैं, वैसे ही परस्पर अभेद कल्पना से अभिन्न आदि में प्रकट हुए। जैसे अज्ञानी लोगों की दृष्टि में विस्तृत निर्मला आकाश में नीलिमा स्फुरित होती है, वैसे ही सब संकल्पनाओं से रहित निर्मल ब्रह्म में अज्ञ लोगों की दृष्टि में ये जीव स्फुरित हुए हैं। श्री हे श्री रामचंद्र जी, जहाँ पर अज्ञानी लोगों का व्यवहार देखा जाता है, वहीं पर जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुए है, ऐसी युक्तियां स्थित है। हे राघव, जहाँ पर ज्ञानी पुरुषों का व्यवहार है, वहाँ यह ब्रह्म से उत्पन्न हुआ और यह उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन शोभा नहीं देता है। हे रामचंद्र जी, जब तक कोई द्वितीय कल्पना प्रसिद्धि को प्राप्त न की जाए, तब तक लोक में उपदेश्य, उपदेशक और उपदेश शोभित नहीं होते। इसलिए भेद दृष्टि से शोचनीय द्वैत कल्पना का व्यवहार काल तक, जब तक कि निश्चय से प्रमेय का निर्णय न हो जाए, तब तक संशय के साथ अंगीकार कर यह ब्रह्म है, ये जीव है, यो वाणी का उपदेश दिया जाता है। इस प्रकार लोक में अभ्युपगम्यवाद देखा गया है। असंग अद्वितीय ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, ऐसा पहले उपदेश देने पर जो उससे उत्पन्न होता है वह तद्रूप ही है, क्योंकि उत्पत्ति के पहले अपने उपादान कारण में स्थित वही आविर्भाव दशा में भी हेतुगत होने के कारण तन्मात्र होता हुआ भी भ्रांति ज्ञान से पृथक सा प्रतीत होता है, अतः द्वैत बाधित होता है, यह अर्थ है। मेरु और मंदर की तुल्य बहुत सी जीवराशियां पुनः पुनः उत्पन्न होकर उसी परम तत्व में लीन हो गई हैं। उसके बाद जैसे विविध दिशाओं में वृक्षों में पल्लव लगते हैं, वैसे ही यह अनंत जीवराशियां हजारों की संख्या में उस परम पद में उत्पन्न होकर स्फुरित होती हैं। जैसे वसंत ऋतु में नूतन अंकुर उत्पन्न होते हैं, वैसे ही आगे भी उस परम पद में ये जीव समूह उत्पन्न होंगे। जैसे ग्रीष्म ऋतु में वसंत ऋतु के रस लीन हो जाते हैं, वैसे ही फिर उसी में लीन हो जाएंगे वे और अन्य अनेक जीव राशियां सदा उस परम पद में स्थित रहती हैं, उसी से उत्पन्न होती है और उसी में लीन हो जाती है। हे रामचंद्र जी, जैसे पुष्प और सुगंधि अभिन्न है, वैसे ही पुरुष यानी कर्ता और कर्म अभिन्न है, ये परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और फिर उसी में शनै शनै लीन हो जाते हैं। ये दैत्य नाग मनुष्य देवता इस जगत में वस्तुतः उत्पन्न न होते हुए भी वासना रूप भूत मात्र उपाधियों से उत्पन्न होते हैं और तुरंत स्फुरित होते हैं, यानी गमन आदि क्रिया से युक्त होते हैं। इससे जन्म और कर्म की सहोत्पत्ति और अभेद प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। हे सज्जन शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, उन दैत्य नाग मनुष्य देवता आदि संसार भ्रमण में आत्मस्वरूप के विस्मरण के सिवा अनान्य जन्म रूपी फल देने वाला दूसरा कोई हेतु नहीं दिखाई देता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, प्रामाणिक दृष्टि वाले यानी अलौकिक यानी धर्म और ब्रह्म में प्रमाणभूत श्रुति से जिनकी दृष्टि उत्पन्न हुई है, वितराग यानी प्रामाणिक दृष्टि वाले वितराग मनु आदि ने धर्माधर्म रूप अर्थ में स्वमूल श्रुति से विवाद न करने वाले मीमांसा के न्यायों से निर्णय करके जो जो स्मृति पुराण कल्पसूत्र इतिहास आदि रचे हैं वे शास्त्र नाम से कहे जाते हैं। भाव यह कि श्रुतियां और श्रुति मूलक स्मृतियां आदि अलौकिक विषय अलौकिक अर्थ में प्रमाण है। जो अत्यंत विशुद्ध सत्वगुण से युक्त है दुखदायी विषयों से विचलित नहीं हो सकते है राग द्वेष आदि से रहित है एवं शब्द से जिसका निर्वचन नहीं हो सकता ऐसी निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म की साक्षात्कार ला से संपन्न है वे संत कहे गए हैं। पूर्वोक्त लक्षण वाले संतों का सदाचार और श्रुति स्मृति रूप शास्त्र ये दो ही जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ उन शिष्टों के सब कर्मों की सिद्धि के लिए यानी धर्म तत्व और ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए सदा दो नेत्र है। जो पुरुष स्वर्ग और मोक्ष के उपयोगी सम्यक व्यवहार के लिए शास्त्र का अनुसरण नहीं करता उसका सब शिष्ट पुरुष बहिष्कार कर देते हैं और वह दुख में निमग्न हो जाता है। हे प्रभो इस लोक में प्रामाणिक पुरुषों में और वेद में सदा इस प्रकार की प्रसिद्धि है कि कर्म और कर्ता हेतु और फल रूप से संसृष्टि है यानी कर्म और कर्ता का कार्य कारण भाव है। बीज और अंकुर के सदृश कर्म से कर्ता की सृष्टि होती है और कर्ता से कर्म का निर्माण होता है वह न्याय लोक और वेद में प्रसिद्ध है। जैसे बीज से नूतन अंकुर उत्पन्न होता है वैसे ही कर्म से जंतु उत्पन्न होता है। जैसे अंकुर से पुनः बीज होता है वैसे ही जंतु से कर्म होता है। जिस वासना से जीव संसार रूपी पिंजड़े में प्रविष्ट किया जाता है उस वासना के अनुरूप उसे फल का भी अनुभव होता है। ऐसी अवस्था में जन्म के निमित्त भूत कर्म के बिना परम पद रूप ब्रह्म से प्राणियों की उत्पत्ति आपने कैसी कही। हे भगवान आपने इस सहोत्पत्ति पक्ष से इन जीव और कर्मों की जगत में प्रमाणों द्वारा प्रसिद्ध परस्पर हेतु फलता का तिरस्कार कर दिया है। अद्वय होने के कारण अपने से अतिरिक्त कारण शून्य माया शबल ब्रह्म में आकाश आदि से लेकर स्थूल देह पर्यंत भोगायतन की सृष्टि कर्मों का फल है और उसके फलस्वरूप यानी कार्यभूत हिरण्य गर्भ आदि स्थूल सूक्ष्म उपाधियों में भोग और उसकी सामग्री की सृष्टि फल है। यो लोक में प्रसिद्ध इन दोनों प्रवादों का आपने खंडन कर दिया। कर्मों के निष्फल होने पर नरक आदि का भय न होने के कारण लोक में सांकर्य यानी संकरता होने पर जैसे बड़े मत्स्य छोटे मत्स्य को निगल जाते हैं वैसे ही बलवानों द्वारा हीन बलों की हिंसा होगी यो नाश ही अवशिष्ट रहेगा। भगवान इसीलिए आप यथार्थता मुझसे कहिए कि किया हुआ कर्म फल रूप से अवश्य परिणित होता है या नहीं। मेरे इस महान संशय को आप दूर कीजिए। आप तत्वज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है इसीलिए आप में ही मेरे संशय को दूर करने की सामर्थ्य है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे रामचंद्र जी मुझसे आपने जो यह सुंदर प्रश्न किया यह बहुत ही अच्छा किया। सुनिए मैं आपसे कहता हूँ जिससे अवश्य ज्ञान का उदय होगा। यद्वि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति यानी जिसका मन से ध्यान करता है उसे वाणी से बोलता है उसे कर्म से करता है। इस श्रुति से मन का क्रिया कौशल प्रतिसंधान रूप से जो यह विकास है वही कर्मों का प्रसिद्ध कारण है। मन के विकास के बाद ही क्रिया सिद्धि रूप फल देखा जाता है। जिसमें मन का सहयोग नहीं है ऐसी देह चेष्टा का कोई फल नहीं दिखाई देता है। आदि सृष्टि में परम पद रूपी ब्रह्म से जब ही मन रूप तत्व उत्पन्न हुआ तभी मन रूप उपाधि वाले आविर्भूत समष्टि व्यष्टि जीवों का कर्म भी उदित हुआ अजीव प्राक्तन वासना के अनुसारी देह वाला होने से देह में अहम भाव से स्थित हुआ। इस विषय में श्रुति भी तन मनो कुरुताम कुरुतात्मन भी स्यामिति, यानी उसने मैं मन से मनस्वी होऊं, इस अभिप्राय से मन की रचना की। मन के जन्म के अधीन ही आत्मन्विता के से कथित देहित्व और संचारण रूप कर्म दिखलाती है। दूसरी श्रुति भी है, इससे मन ही करता है, आत्मा करता नहीं है, यह दिखलाने के लिए मैं सहोत्पत्ति यानी पुरुष और कर्म की सहोत्पत्ति पक्ष दर्शाया है। जैसे परस्पर अभिन्न पुष्प और सुगंधि का भेद नहीं है, वैसे ही परस्पर अभिन्न कर्म और मन का भेद नहीं है। इस जगत में कर्म संस्कार रूप से मन में स्थित क्रिया ही अदृष्ट के फल रूप से आविर्भूत होकर देह स्वर्ग नरक आदि रूप होती है। इस प्रकार उस कर्म का आश्रय देह भी पहले मन ही था। भावी देहकारता के अभिमान को प्राप्त हुए ही मन का पूर्व देह से उत्क्रमण सुना जाता है। आतिवाहिक यानी सूक्ष्म देह की ही वासना के बल से स्थूल देहाकार में कल्पना होती है, ऐसा पहले कह आए हैं। इसलिए मन ही कर्म है। वह ऐसा कोई पर्वत नहीं है, वह कोई आकाश नहीं है, वह समुद्र नहीं है, वह लोक नहीं है जहां पर किए हुए अपने कर्मों का फल न हो। सावधान होकर किया गया सांगोपांग रूप से विराजमान कर्म, चाहे वह ऐहिक हो या चाहे प्राक्तन हो, पौरुष ही प्रयत्न है, वह कभी निष्फल नहीं होता। जैसे कृष्णता का क्षय होने पर काजल स्वयं क्षीण हो जाता है, चरणात्मक कर्म का नाश होने पर मन का क्षय हो जाता है। भाव यह कि कर्म और मन में से एक का विनाश चाहने वाले पुरुष को चलनात्मक प्राण के अथवा मन के निरोध रूप हट योग या राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, यही उनका फल है। कर्म का नाश होने पर मन का नाश हो जाता है, मन का नाश होने पर कर्म का अभाव हो जाता है। योग से जनित तत्व साक्षात्कार से अविद्या का नाश होने पर दोनों का आत्यंतिक विनाश होता है, अन्यथा नहीं होता, इस आशय से कहते हैं। यानी कर्म नाश होने पर मनोनाश या मनोनाश होने पर कर्म का अभाव मुक्त पुरुष का होता है, जो मुक्त नहीं है उसका कदापि नहीं होता। अग्नि और उष्णता की भांति सदा अभेद से मिले हुए दोनों में से चित्त और कर्म में से एक का अभाव होने पर दोनों ही विलीन हो जाते हैं। एक का विनाश है श्री रामचंद्र जी, चित्त को सदा स्पंद रूप विलास को प्राप्त होकर एकमात्र स्पंद रूप यानी विहित और निषिद्ध के आचरण द्वारा पुण्य पाप धर्माधर्म रूप में परिणत हुआ कर्म जानिए, और कर्म भी पुण्य पाप के फल के भोग के अनुरूप स्पंद रूप विलास को प्राप्त होकर चित्त रूप में परिणत होता है। अतएव लोक में वे दोनों चित्त और कर्म धर्म और कर्म शब्द से कहे जाते हैं। 95वां सर्ग समाप्त।